الحمد لله، سلام على عباده الذين اصطفى. قلت مجلس من ساجس کا جو سفر تھا امریکہ اور کینیڈا کا، کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئی، اور سفر کا پہلا حصہ واشنگٹن ڈی سی میں گزرا،
ہوتا
اور اس سے متعلق چند باتیں کی گئی، اور واشنگٹن کے بعد سفر ہم نے کیا کینیڈا، اور کینیڈا جانا ہوا، بلکہ مجلس کے آخر میں ہم نے بتایا کہ ٹورانٹو پہنچتے ہی سب سے پہلے جو چیز وہاں محسوس ہوئی کہ ایسا لگتا ہے کہ چرسیوں کا ملک ہے، وہاں کی حکومت نے لیگل کر دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چرس بیچنا بھی قانوناً جائز ہے، خریدنا بھی قانوناً جائز، استعمال کرنا بھی جائز ہے، اور یہ عجیب بات ہے کوئی ملک اس طرح کی نشے کی چیز کیسے قانونی طور پہ اجازت دے سکتا ہے۔ تو جاتے ہی جہاں ہم ٹھہرے تھے اس کے قریب ایک سٹور تھا، سٹور کے باہر اتنے سارے نوجوان بچے بچیاں بڑے لوگ چرس پی پی کے زمین پہ لیٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ پھر بھیک بھی مانگتے تھے، ذہنی مریض لگ رہے تھے۔ ایک عورت تھی نظر آئی جو مستقل رہتی، تو عجیب سی ایک وحشت سے ہوئی، سامنے دیکھا تو چرس کی ایک دکان تھی، یاد نہیں پڑتا ہے کبھی چرس کی دکان دیکھی ہوگی، حالانکہ 10 سال امریکہ میں گزرے، مگر یہ منظر عجیب ہی تھا۔ پھر ہر قریب دور چرس کی دکان نظر آتی تھی، اور اچھے خاصے سمجھدار نوجوان بالکل زندگی میں ناکارہ ہو، یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ سمجھدار لوگوں کی پارلیمنٹ اس طرح کا قانون پاس کر، تو بہرحال کینیڈا پہنچے تو یہ پہلا امپریشن تھا، اور اگلے چند دنوں میں بار بار یہ چیز نظر آتی رہی، جس کا ایک افسوس بھی تھا۔ کینیڈا میں ایک دیکھنے کی چیز بہت اہم، جو عام طور پہ جو لوگ بھی جاتے ہیں، خاص طور پہ دور سے جو جاتا ہے، وہ وہاں پہ ایک بہت بڑی فالز ہے، بہت بڑی آبشار جس کو نائگرا فالز کہتے ہیں، اور یہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان واقع ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے اونچی ترین آبشار ہے۔ تو اس نائگرا فالز ایک شہر کا نام بھی ہے، اسی کے اندر یہ آبشار واقع ہے، اور وہاں پہ ہمارا پہلا بیان تھا شام کے وقت، تو کچھ وقت پہلے جلدی چلے گئے، اور وہ آبشار بھی دیکھ لی جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اور پورا شہر جو ہے ایک ٹورسٹ سٹی بن چکا اس آبشار کی وجہ سے، اور یہ دنیا کی سب سے اونچی آبشار بہت بڑی، ایک ہارس شو کی شکل میں، یعنی یوں ہے، اور اس کے اندر سے پانی نیچے گرتا ہے، اور پھر پانی سے جو مسٹ اڑتی ہے وہ بھی بہت زیادہ۔ تو وہاں ایک چھوٹی سی کشتی چلتی ہے جس کے اندر لوگ پلاسٹک کا ایک کپڑا پہن کے اور اس آبشار کے پاس جاتے ہیں، ہم بھی گئے، تو آبشار کے پاس گئے تو اس سے اڑنے والی مسٹ جو ہے اس نے پورا گیلا کر دیا، مگر خوبصورت منظر بہت تھا، اور ساتھی جو ساتھ تھے ان کو بھی بہت مزہ آیا۔ تو ایک اچھی एक्टिविटी हुई, और उसकी थोड़ी देर बाद जो है मगरिब के वक्त बयान का वक्त था, तो वहां से नायग्रा फॉल्स के शहर नायग्रा फॉल्स सिटी में मस्जिद थी, उसका नाम मस्जिद आयशा था। और मस्जिद आयशा के बनाने वाले कुवैत से आने वाले मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान थे, उन्होंने मस्जिद आयशा के नाम से इन इलाकों में 3, 4, 5 मस्जिदें बनाई थी। एक आदमी थे, उन्होंने ये बयान रखा था। बयान के लिए गए तो ज्यादा कम्युनिटी कनेडियन थी, अरब थे, मिक्स थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग, अफ्रीका से आए हुए लोग। तो अंग्रेजी में बयान हुआ। मस्जिद के इमाम साहब जो थे वो ट्रिनिडैड के थे, और आलिम दीन थे। ट्रिनिडैड में हमारे अकाबरीन बनाए हुए बहुत सारे मदारिस हैं, उनमें से एक मदरसे से फारिग तहसील आलिम थे, और बहुत ही मालदार फैमिली से ताल्लुक रखते थे, मगर नेक फैमिली थी, तो उनके दादा भी मौजूद थे। बयान के बाद उन्होंने बताया, नौजवान आलिम थे, कि जी बहुत सारे नौजवानों ने यहाँ पे कुरान के लिए क्लास में रखा हुआ है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, वो सब आज आए हुए हैं, तो अगर आप अलग से उनको कुछ खिताब करें। तो फिर बयान के बाद से फिर अलग से गुफ्तगू की, और इस तरह से ये एक बयान जो है वो दो बयान हो गए। और फिर ये ट्रिनिडाड वाले जो मौलाना साहब थे और उनके दादा भी आए हुए थे, बड़े पुरजोर तरीके से ट्रिनिडाड आने की दावत दी, यदि आप अमेरिका कनाडा आते हैं तो ट्रिनिडाड भी जरूर लाएं, वेस्ट इंडीज के अंदर ये एक जगह है। तो उनसे कहा कि जरूर इंशाल्लाह अगली मरतबा आएंगे तो जरूर तरतीब में उसको देख लेंगे। और मौलाना साहब ने फिर कहा कि रब्ता भी रखना चाहिए, तो आप नंबर भी ले गए। तो इस तरह ये बयान मुकम्मल हुआ, बहुत सारे लोगों से दोस्ती हुई। कनाडा का जो शहर है उसमें हिदाया एकेडमी, और ये कनाडा का जो मुल्क है उसमें हिदाया एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। और हमारे एक पुराने जानने वाले मोहम्मद अली साहब, जो हमारे यहाँ हिदाया एकेडमी के स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने ये सारे बयानात की तरतीब दी थी। मस्जिद के जो ओनर थे उन्होंने कहा कि जी अब आप खाने पे हमारे साथ चले। आपसे पहले हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहब तशरीफ लाए हुए थे, उनको भी हम खाने पे ले गए थे, आपको भी हमने लेके जाना है जी। बहुत अच्छा, तो किसी रेस्टोरेंट पे फिर गए, वहाँ खाना खाया, और बड़ी उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया। और फरवरी में होने वाली कैनेडा में एक बहुत बड़ी सीरत कॉन्फ्रेंस में आने के लिए उन्होंने दावत भी दी, और हमने उनसे कहा कि इंशाल्लाह वादा तो नहीं, मगर जैसे ही तरतीब बनती है तो आपको बताते हैं। तो इस तरह ये पहले दिन की तरतीब बनी, और कनाडा में ये बयान 4, 5 साल बाद आना फिर हुआ। अगले दिन का जो बड़ा बयान था वो मस्जिद अबू बकर में था, वो शहर की बड़ी मसाजिद में से एक मस्जिद थी, और वहां का बयान उन्होंने उर्दू में रखा हुआ था। तो वहां भी पहुंचे, मगरिब की नमाज के बाद बयान था। उर्दू बोलने सुनने वाले बहुत सारे लोग वहां तशरीफ फरमा थे। अफगानिस्तान से आए हुए एक साहब आगे बैठ के बड़े गौर से पूरा बयान सुनने लगे, और बयान के बाद उन्होंने भी कहा खाने पे चले, मुझे बहुत खुशी होगी। तो आमतौर पे कनाडा अमेरिका में बयान होते हैं तो बयान की तरतीब होती है, खाने की भी तरतीब पहले से तय होती है, और तरतीब तय नहीं हो तो जरा सा मुश्किल हो जाता है, मगर जिस मोहब्बत से उन्होंने दावत दी, मना करना मुश्किल लग रहा था। तो हमारे करीबी साथी मोहम्मद अली साहब और उनके वालिद साहब और उस वक्त दो तीन और स्टूडेंट्स हिदाया एकेडमी के दूर दराज से आए हुए थे मिलने के लिए, उन सबके हमरा जो है वो अफगानी रेस्टोरेंट में गए। उन्होंने कहा जी आपको काबुली पुलाव खिलाते हैं यहाँ टोरंटो में। चले काबुली पुलाव खाते हैं, तो बड़ी अच्छी जगह थी, बड़ा लजीज खाना भी था और बड़ी उन्होंने मोहब्बत का भी इजहार किया और बड़ा इकराम भी किया। खाना खाने के बाद ऐसी बात की जो याद रह गई। वो कहने लगे कि आज के जमाने में अल्लाह के नबी को हम देख नहीं सकते, मगर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं और उस इजहार के लिए और कोई हमारे पास रास्ता नहीं, और वो यही है कि उलमा का इकराम किया जाए। तो इसलिए आज आपको यहाँ पे मैं लेके आया, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। अल्लाह, तो मैंने कहा देखिए वो तो अपनी मोहब्बत में कामयाब, तो उन्होंने जहां कोई आलिम देखा तो उन्होंने अपनी मोहब्बत से इकराम किया। मसला हमारा है कि हम इस मोहब्बत में कामयाब कैसे होते। तो यूं दूसरा दिन मुकम्मल हुआ। अमेरिका कनाडा में फासले भी बहुत ज्यादा ज्यादा है, एक बयान का मतलब 4 घंटे होता है आमतौर पे। एक बयान सफर करके 1 घंटे तक जाना होता है, घंटे का बयान होता है। फिर क्योंकि इतनी दूर से आप आए तो लोगों से मुलाकात करके उनको फिर टाइम देना होता है। तो 1 घंटा आना, 2 घंटे बयान में, फिर 1 घंटा वापसी, तो 4 घंटे लग जाते हैं। अगर आप दिन में 2 बयान रखें तो ये 8 घंटे का मामला है। तो वहां से वापसी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हिदाया एकेडमी के 3-4 स्टूडेंट्स मुख्तलिफ दर्जों के मुख्तलिफ इलाकों से मिलने के लिए आए, पर एक हमारे स्टूडेंट थे जो सैस्कटून में, तकरीबन ये शहर का नाम है, रहते थे। उन्होंने मैसेज किया कि हजरत आना तो चाहता था मगर 3 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से टोरंटो, इतना दूर। कनाडा और अमेरिका छोटे मुल्क नहीं है, बहुत बड़े मुल्क है, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक जाना इतना बड़ा फासला है जितना यहां से लंदन तक जाना, यहां से यूरोप तक जाना, ये बहुत बड़ा मुल्क। ये अमेरिका इतना बड़ा और कहते हैं कि कनाडा उससे भी ज्यादा बड़ा, तो बहुत बड़ा मुल्क। और हम अमेरिका की 50 रियासतों में से यूं समझ लें हमारा रकबा एक रियासत जितना है, और हम कोई 22-23 करोड़ हैं, और वो हमसे 50 गुना बड़े हैं, और पूरी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 30 करोड़ है, और कनाडा हमसे रकबे के एतबार से उससे भी ज्यादा बड़ा, और पूरी पॉपुलेशन जो है वो 3 करोड़ है। तो पहले दिन भी मुकम्मल हुआ, फिर दूसरे दिन भी मुकम्मल हुआ, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन जुमा का दिन था, और जुमे का बयान जो है वो टोरंटो की सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है, कूपर्स मॉस्क, कूपर्स मस्जिद है जिसको कहते हैं, बहुत बड़ी मस्जिद। जुमे की नमाज के लिए पहुंचे, अंदर का हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था, बाहर से भी लोग और आए हुए थे, हमारे अपने जानने वाले मुतालिकीन भी कई सारे। मोहम्मद अली साहब के साथ हमारे एक और भी करीबी जानने वाले नबील साहब से, वो गाड़ी में लाते ले जाते, तो सब लोग वहां मौजूद थे। 3 घंटे 4 घंटे के मुसाफत से एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक और हमारे जानने वाले साथी, वो भी सुन के वहां से सफर करके सिर्फ जुमा पढ़ने के लिए आए। तो बहुत सारे लोगों की वो मिलने का एक पॉइंट बन गया। तो जुमे का अल्हम्दुलिल्लाह बयान हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, सबने अपने नंबर दिए, सबने कहा अगली मरतबा जब भी आना हो तो आप इस मस्जिद को ज्यादा वक्त दें। और यूं जुमा मुकम्मल हुआ और हमारे जो साथी जो वहां से आए हुए थे 3-4 घंटे यूनिवर्सिटी से ट्रैवल करके, वो इस वक्त माशाल्लाह मुराकबे में भी मौजूद हैं। यहाँ जिक्र मुराकबे करने वाले बहुत सारे लोग अमेरिका और कनाडा में मौजूद हैं। हम कई मरतबा ये समझते हैं कि उन मुल्कों में कोई क्या दीनी काम करता होगा, मगर जिक्र मामूलात करना, अल्लाह अल्लाह करने वाले बहुत सारे अल्लाह वाले उन मुल्कों में मौजूद हैं। ये हमारे अकाबरीन की मेहनत, दावत तबलीग की मेहनत, मशायख तसव्वुफ की, उलमा की मेहनत जो इन मुल्कों में है वो रंग लाई। तो इस तरह जुमा भी मुकम्मल हुआ। हफ्ते के दिन आखिरी बयान था और वो बयान मोहम्मद अली साहब के घर पे था। मस्तूरात का भी खूब इंतजाम, मर्दों का भी खूब इंतजाम था और हर तरफ से लोग 3-4 दिन हो भी गए थे तो आए हुए थे। और यही बयान करके वापस निकलना था। तो वहां पे 3-4 करीबी साथियों के ने बताया कि आपस में शादी में मियाँ बीवी में इख्तलाफात ज्यादा होते हैं, तो मियाँ बीवी की आपस के ताल्लुकात से मुतालिक किस तरह से अच्छी तरह से रहना है, इससे मुतालिक बयान हुआ। और फिर बयान के बाद जो है वो वहां से वापसी हो गई। तो कनाडा का सफर जो है वो यूं मुकम्मल हुआ और कनाडा का सफर करके वापसी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। वॉशिंगटन डीसी में 2-3 दिन गुजार के और फिर 3-4 घंटे की फ्लाइट लेके, यानी यहां से जितना सऊदी अरब दूर है, वॉशिंगटन डीसी से टेक्सास जाना था। टेक्सास के शहर डैलस में हिदाया एकेडमी भी है, हमारी एक ब्रांच वहां पे, और ह्यूस्टन में भी बहुत सारे साथी हैं। तो इन 2 शहरों में जाना था। इंशाल्लाह कल की मजलिस में इन 2 शहरों से मुतालिक गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह ताला इस सफर को भी कबूल फरमाए, इस सफर को हम सबकी इस्लाह का जरिया बनाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.